नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जीएसटी काउंसिल की 91वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। जिस गेमिंग इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि उस पर 28% जीएसटी नहीं लगेगा, अब बैठक के इस फैसले ने उसे बड़ा झटका दे दिया। साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% जीएसटी लगेगा ही, वहीं फैसले की समीक्षा 6 महीने बाद ही की जाएगी। बताया गया है कि 1 अक्टूबर से नई जीएसटी दर लागू हो जाएगी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने तक देखने के बाद ही इस फैसले को फिर रिव्यू किया जाएगा। अभी के लिए बताया जा रहा है कि दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए टैक्स का विरोध किया। वे इस फैसले की फिर समीक्षा चाहते हैं। अभी के लिए वित्त मंत्री ने इतना साफ जरूर बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के दौरान सिर्फ शुरुआत में ही 28% जीएसटी लगेगा, प्रत्येक दाव पर अलग से टैक्स नहीं लगेगा। अब जो राज्य इस बढ़ी हुई जीएसटी दर का विरोध कर रहे हैं, उनका एक ही तर्क है कि इसे राजस्व पर बुरा असर पड़ेगा, उन सभी राज्यों को रेवेन्यू लॉस होगा। लेकिन क्योंकि ज्यादा राज्य इस फैसले के समर्थक में हैं, ऐसे में जीएसटी बैठक में निर्णय टैक्स लगाने पर ही लिया गया। पिछली बैठक के दौरान सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी, उसी वजह से विरोध के सुर भी सुनाई पड़े थे। अंबुजा सीमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए के उपक्रम मूल्य पर सांगी इंडस्ट्रीज में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की। सांगी इंडस्ट्रीज पश्चिम भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनी है। अडानी समूह की इकाई अंबुजा सीमेंट द्वारा सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL के मौजूदा प्रवर्तकों रवि सांगी और परिवार से कंपनी की 56.74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। कंपनी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि इस अधिग्रहण का वित्त पोषण पूरी तरह आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी की कंपनियों पर वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद ये समूह द्वारा किया गया पहला बड़ा सौदा है। इस सौदे से बढ़कर 7.36 करोड़ टन सालाना करने में मदद मिलेगी। अल्ट्राटेक के बाद अंबुजा सीमेंट दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट विनिर्माता है। अडानी समूह पिछले साल सितंबर में अंबुजा सीमेंट और उसकी अनुषंगी ACC लिमिटेड में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के बाद सीमेंट क्षेत्र में उतरा था। स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट के रुख और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के बीच बृहस्पतिवार को रुपया शुरुआती कारोबार में 5 पैसे टूटकर 82.72 प्रति डॉलर पर आ गया। फॉरेक्स डीलर ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा में मजबूती तथा विदेशी कोषों की सतत निकासी से भी रुपए की धारणा पर असर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.71 पर खुला और फिर 82.72 प्रति डॉलर के भाव पर पहुंच गया। ये पिछले बंद स्तर की तुलना में 5 पैसे की गिरावट है। रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 82.67 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.10% बढ़कर 102.68 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.10% बढ़कर $83.28 प्रति बैरल के भाव पर था। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख तथा विदेशी कोषों की निकासी से बृहस्पतिवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 299.99 अंक टूटकर 65,482.79 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87.5 अंक के नुकसान से 19,439.05 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के शेयरों में टाइटन, बजाज फिनसर्फ, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील और JSW स्टील नुकसान में थे। दूसरी ओर सनफार्मा, NTPC, HDFC बैंक और LNT के शेयर लाभ में थे। अन्य एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निकी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में थे। बुधवार को अमेरिकी बाजार नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.11% बढ़कर $83.29 प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 1,877.84 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। भारतीय शेयर बाजार में IPO का सिलसिला भी जारी है। भारतीय बाजार में निवेशक नए IPO का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज मुंबई स्थित फाइनेंस कंपनी SBFC फाइनेंस लिमिटेड का IPO खुल गया है। कंपनी का IPO 3 अगस्त से 7 अगस्त तक खुला रहेगा। कंपनी ने 1,025 करोड़ रुपए का इश्यू जारी किया। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 54 रुपए से 57 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।